सब समाधान।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। आज पूर्णिमा है, बुद्ध जयंती है, तो आज के इस बुद्ध जयंती के शुभ अवसर पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। वास्तव में जब कभी हम किसी महापुरुष की जयंती को याद करते हैं तो उनका पूरा जीवन हमारे सामने आ जाता है। और गौतम बुद्ध ऐसे ही महामानव थे जिन्होंने पूरे समाज को एक नई दिशा दी, एक नई राह दिखाई। समाज में तब अनेक प्रकार की विकृतियां आ गई थीं, उन्होंने उन विकृतियों को दूर करने में और साथ ही लोगों को एक सहज जीवन जीने की राह दिखाई। यद्यपि वो एक राज परिवार से थे और उनके जीवन में किसी भी प्रकार के दुख या किसी प्रकार की अशांति नहीं थी, लेकिन सत्य की लिप्सा, सत्य को जानने की चाह और समाज की सेवा करने की चाह ने उन्हें महामानव बना दिया। उनके पिता शुद्धोधन और माता महामाया वास्तव में चाहते थे कि वो बहुत बड़े सम्राट बने, लेकिन भविष्यवाणी ये कर दी गई थी कि या तो ये सम्राट बनेंगे या एक महायोगी बनेंगे जो समाज को एक नई राह दिखाएगा। एक योगी की शायद आवश्यकता तब थी और उन्होंने योग का मार्ग अपनाकर सचमुच समाज को इतना कुछ दिया कि आज भी हम उन्हें याद कर रहे हैं, न केवल भारतवर्ष में लेकिन दक्षिण पूर्वी देशों में बौद्ध धर्म को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं। हम यहां इसे बुद्ध पूर्णिमा या बुद्ध जयंती कहते हैं और वहां पे इसे वेसाख के नाम से मनाया जाता है। लोग अलग अलग प्रकार के नए नए वस्त्र पहनते हैं, विशेष करके सफेद वस्त्र पहनते हैं, इसीलिए आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैंने भी श्वेत वस्त्र धारण कर लिया है। लोग पूजा अर्चना भी करते हैं, बोध गया में आते हैं और धर्म ग्रंथों का पाठ आदि करते हैं और बुद्ध ने जो राह दिखाई उस राह पर चलने की प्रेरणा प्राप्त भी करते हैं और दूसरों को भी प्रदान करते हैं। तो आज के इस शुभ अवसर की फिर से एक बार आप सबको बधाइयां और आइए स्वागत करते हैं भ्राता जी का और उस महामानव के जीवन पर एक नजर डालते हैं ताकि हम भी अपने जीवन में कुछ अंश तो धारण अवश्य कर सकें। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है और बुद्ध जयंती की आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं।
बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई और विशेष रूप से बुद्धिस्ट लोगों को जो कि संसार में शायद 50 करोड़ से अधिक हैं, आज के इस दिवस पर बहुत बहुत बधाइयां। हमारी शुभकामनाएं कि सभी उन आचरणों पर चलें जो महात्मा बुद्ध ने सभी के लिए प्रस्तुत किए थे।
जी भ्राता जी, विशेष करके एक परिवर्तन जो आया महात्मा बुद्ध जी के जीवन में, यद्यपि उनके माता पिता ने ऐसी व्यवस्था करके रखी थी कि उन्हें किसी प्रकार की कोई कमी न हो और दुख वो देख ना पाए, क्योंकि ये कहा गया था कि दुख जैसे ही ये देखेंगे शायद इनके अंदर विरक्ति आ जाएगी, और ये उन्होंने देखा जब वो महल से बाहर गए, किसी के रोगी को देखा, वृद्ध को देखा, किसी मरे हुए व्यक्ति को देखा, सन्यासी को देखा, तो एक जीवन में तुरंत ही एक परिवर्तन सा आ गया, उन्होंने सत्य की तलाश शुरू कर दी। आज लगातार हम इन चीजों को देखते हैं, फिर भी इस प्रकार का परिवर्तन हमारे जीवन में क्यों नहीं आता?
जो महानात्माएं हैं वो पूर्व से ही ऐसे संस्कार लाया करती हैं। ये संसार एक विशाल नाटक है और इस नाटक में अलग अलग आत्माओं को अलग अलग पार्ट है, तो जो धर्म पिता हैं इनको उसी तरह का पार्ट परमात्मा की ओर से दिया गया है, तो बचपन से ही उनमें वो संस्कार जागृत होने प्रारंभ हो जाते हैं। भले ही उन्हें सब सुख सुविधाएं थी लेकिन उन्होंने मुर्दे को अर्थी पर ले जाते हुए तो देखा ही, गरीब भी कहीं ना कहीं मनुष्य को देख ही जाते हैं, वो राजकुमार थे तो जरूर वो अपने राज में चक्र लगाते ही होंगे, दुखी कहीं रोने की आवाज ये सब तो थोड़ी सी थोड़ी हो ही गई थी उन दिनों भी, अब भी आज की भेंट में वो समय बहुत ही सुंदर था और ऐसी तामसिकता, ऐसा बहुत अति दुख उस समय नहीं था, लेकिन उनके मन में भी तो वैसी भावनाएं थी कि कोई भी दुखी ना हो, तो उनके इस जीवन की शुरुआत हुई एक बहुत विशाल वैराग्य से। इस वैराग्य ने उनसे त्याग करा दिया और एक रात वो अपनी पत्नी और बच्चे राहुल को छोड़कर जंगल की ओर चल दिए, क्योंकि यही परंपरा चली आ रही थी कि किसी को अगर सत्य की खोज करनी है तो वो महलों में नहीं जंगल में होगी। तो यहाँ से शुरू हुई उनकी श्रेष्ठ कहानी और फिर बहुत साधनाएं की, तपस्या की, वेदों का अध्ययन किया, लेकिन उन्हें कहीं भी संतोष नहीं हुआ। आखिर इसी दिन पर उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ। इस दिन का ये परम महत्व है कि जन्म, उनका बुद्धत्व प्राप्त होना और उनका निर्वाण होना, तीनों ही इसी दिन पर हुए।
ये तीनों चीजें हुई हों
इसलिए बहुत महत्व है बुद्ध पूर्णिमा का। तो ऐसे महान पुरुष तो वे थे, वैसे भी राजकुमार थे, उनके चेहरे पर बड़ा तेज था। और फिर मनुष्य जब पवित्रता धारण कर लेता है और राजाई जीवन में पालना हुई हो तो नेचुरली उनमें बहुत आकर्षण रहा ही, और तपस्या उन्होंने बहुत की, अपने को भूखा प्यासा रखा, लेकिन अंततः उन्हें आभास हो गया कि इस सब से नहीं। आज के ही दिन जब वो पेड़ है वहाँ पर, मैं भी होकर आया हूँ, उसके नीचे बैठे ध्यान मगन थे तो उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ। इसके पीछे तो एक बहुत सुंदर रहस्य है जो स्वयं भगवान ने हमें आकर बताया है, जो शायद बुद्धिस्ट लोग भी जानते नहीं हैं। तो ये सब चीजें अचानक नहीं हुआ करती। वास्तव में सत्य ये है कि ये सब जो धर्म पिता होते हैं, इनमें कोई दूसरी महान आत्मा प्रवेश करती है। जैसे मोहम्मद साहब और इब्राहिम आदि के लिए दिखाया कि फरिश्तों से उनका कनेक्शन था, क्राइस्ट के लिए भी यही दिखाया है। तो ये जो महान आत्माएं हैं जो धर्म पिता बनकर इस धरा पर अवतरित हुए, महात्मा बुद्ध के तन में भी उस महान आत्मा ने प्रवेश कर लिया जो ज्ञान से भरपूर थी, और उनको माध्यम बनाकर, उनके मुख का आधार लेकर उन्होंने सबको ज्ञान दिया। तो ये घटना इसी दिन हुई, इसलिए इसको उनके बुद्धत्व प्राप्ति का दिन भी माना जाता है।
लेकिन भ्राता जी, जो आप उद्घाटित कर रहे हैं, शायद इसकी जानकारी लोगों को नहीं है। वो तो यही मानते हैं कि बुद्ध ने ही इतनी साधना की, कठोर तप की, और कठोर तप के पश्चात ही ये बुद्धत्व उन्हें प्राप्त हुआ। तो क्या ये साधना का महत्व तो नहीं था?
देखिये, हम सब भी यही मानते थे कि अचानक उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हो गया, बोध हो गया, बुद्धत्व माना सत्य का बोध हो गया। लेकिन ये सब चीजें अचानक नहीं हुई। जब हमें ईश्वरीय ज्ञान मिला और स्वयं भगवान ने ये रहस्य खोले, तो उन्होंने बताया कि सभी धर्म पिताओं के मुख से कुछ और आत्माएं, जिन्हें उधर फरिश्ते कहते हैं, क्रिश्चियन लोग एंजल्स कहते हैं, और इधर बहुत एक महान आत्मा जो उस बोध से परिपूर्ण थी, उस सत्य ज्ञान से परिपूर्ण थी, उसने ही उनके तन में प्रवेश किया। ये बात स्वयं ज्ञान के सागर भगवान ने ही जब हमें बताई तो हमें भी इसका बोध हुआ।
तो फिर वो ये जो आत्माओं ने, जिन्होंने प्रवेश किया, वो उनके साथ साथ रहीं या केवल उस समय बुद्धत्व देते वक्त ही उनके साथ
नहीं रही? वो सदा ही उनके साथ रही फिर, और उनके मुख के द्वारा जो ज्ञान उच्चारण हुआ, वास्तव में वो उन्हीं आत्माओं का या फरिश्तों का कार्य था। इसलिए उनका प्रभाव बढ़ता गया और उनके द्वारा ऐसा ज्ञान दिया गया जो पहले नहीं था। क्योंकि अदरवाइज क्या होता कि महात्मा बुद्ध ने तो यही अध्ययन किया था, शास्त्रों का किया, वेदों का किया, वो वही ज्ञान देते जो पहले से प्रचलित था। लेकिन उनके द्वारा ज्ञान दिया गया बिल्कुल अलग, पंचशील का उन्होंने सिद्धांत बनाया, फिर जीवन को सरल करने के लिए अष्टांग मार्ग बता दिया। तो वो नहीं बताया जो पहले था, यद्यपि ये चीजें कहीं ना कहीं शास्त्रों में हैं अवश्य, लेकिन इस तरह से देना ये उस आत्मा के द्वारा ही संभव हुआ।
बिल्कुल प्रदीप जी, ये तो रही एक बुद्धत्व की प्राप्ति, और जब हम कहते हैं कि बुद्धत्व, तो उसे आपने स्पष्ट किया है। लेकिन एक बात और जो मैं कह रहा था कि जिन घटनाओं को देखकर उनके अंदर एक विरक्ति का भाव पैदा हुआ, सत्य को खोजने के लिए वो निकल पड़े, आमतौर पर आज भी ये सब चीजें हम तो देखते हैं, एक सामान्य व्यक्ति भी देखता है, कितने रोगी हैं जो सड़कों के किनारे रहते हैं या फिर अस्पतालों में पड़े हुए हैं, रोज कोई ना कोई अर्थी जाति ही हम देख लेते हैं। तो ये सारी घटनाएं हम भी देखते हैं, हमारे अंदर ये जो विरक्ति का भाव है, ये सत्य को जानने की ललक है, वो पैदा क्यों नहीं होती?
क्योंकि आज भौतिकता बहुत ज्यादा बढ़ गई। देखिए, जब व्यक्ति किसी भी अर्थी के साथ जाते हैं और शमशान में जाकर बैठते हैं तो आपस में यही चर्चा करते हैं, अरे भाई हमें भी ऐसे ही जाना पड़ेगा, कौन क्या लाया है, कौन क्या ले जाएगा, ऐसे ही सब खेल पूरा हो जाएगा। तो वैराग आता तो सबके अंदर है, लेकिन वहीं तक। इसको शमशानी वैराग इसलिए कहते हैं, वहां से बाहर आए फिर अपने काम धंधों में लगे। तो आज मनुष्य स्पिरिचुअलिटी को इतना ज्यादा भूल चुका है, उससे एकदम ये कहें कि स्पिरिचुअलिटी से ही विरक्त हो चुका है। दूसरा, बीमारियां आज हैं, बूढ़े बहुत हैं जिनकी कमर झुक गई है, दुख की तो आज कोई कमी नहीं, जैसे सागर लहरा रहा है, लेकिन मनुष्य को इसमें रहने की आदत पड़ गई है। सभी इससे विरक्त नहीं हो सकते, लेकिन आज भी कुछ महान पुरुष हैं जो ये सब देख कर सत्य के बारे में विचार अवश्य करते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि साधनों की अति, भोग विलास की अति, आज इतनी ज्यादा सबके जीवन में समा गई है कि उस ओर बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। तब भी यही था, सब लोगों का ध्यान इस ओर नहीं जाता था, केवल महात्मा बुद्ध का ही ध्यान गया, क्योंकि उनके अंदर वो संस्कार थे और उनके द्वारा एक नई चीज संसार को देनी थी, इसलिए उसी व्यक्ति को उस तरह
जागृति हुई। आज यदि किसी व्यक्ति के अंदर इस प्रकार के भाव पैदा हो प्रेता जी कि मुझे भी सत्य को जानना है, मुझे भी इनलाइटन होना है, बुद्धत्व को पाना है, तो क्या गौतम की तरह ही उन्हें भी जंगल में चले जाना चाहिए तभी उन्हें बुद्धत्व मिलेगा?
वास्तव में आज भी बहुतों को वैसी ही प्रेरणाएं प्राप्त हो रही हैं और उसी को लेकर हमारे पास भी बहुत लोग आ रहे हैं। हमारे पास आने वालों की आज भीड़ है, उसका कारण हम देखते हैं जब लोगों से बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं स्वयं दुखी हैं, दूसरे के दुख को नहीं देख रहे, कहीं ना कहीं वो स्वयं समस्याओं के जंजाल में फंस गए हैं, कहीं ना कहीं उनके परिवार पर आपत्ति आई हुई है, कोई व्यसनों के वश हो गए हैं बच्चे, कोई चरित्रहीन हो गए हैं, कुछ बच्चे डिप्रेशन में चले जा रहे, बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं जिन्होंने भी कुछ भी पाप नहीं किया है ऐसा उन्हें दिखाई देता है, तो ऐसे लोग हमारे पास भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर झांकने की जरूरत है, और अब तो जबकि भगवान स्वयं सत्य ज्ञान दे रहे हैं तो उसके पास ही आने की जरूरत है। आज तक मनुष्यों को मनुष्यों ने ज्ञान दिया, सतयुग था, देवता देवताओं को पढ़ाते थे, और अब वो सुंदर समय आ गया है जबकि स्वयं भगवान हम मनुष्यों को पढ़ाने के लिए आ गया है। पढ़ाना अर्थात सत्य ज्ञान देना, हम भगवान को परम शिक्षक भी कहते हैं, ज्ञानदाता भी कहते हैं, तो अब वो ज्ञान दे रहा है, इसलिए जिसको भी सत्य की तलाश हो वो आए और सत्य ज्ञान को बड़े सरल रूप से, न कुछ गहरा लंबा चौड़ा अध्ययन करने की जरूरत है और न ही घर छोड़कर जंगल में जाने की जरूरत, ही खान पान छोड़कर अपने शरीर को सुखा देने की बात, केवल सत्य ज्ञान की इच्छा हो और अपनी पूर्व बातों को एक तरफ रखकर आएंगे तो बहुत जल्दी सत्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी।
ये तो कितनी खूबसूरत बात हो गई भ्राता जी। वास्तव में पहले सत्य को खोजने के लिए कहाँ कहाँ व्यक्ति ठोकरे खाता था, यदि हम बुद्ध जी के जीवन को ही देख लें तो कहाँ कहाँ वो गए भटके और कितनी कठोर साधना की, और कितना सरल उपाय आपने बता दिया कि तब सत्य की तलाश थी, अब स्वयं सत्य स्वरूप परमात्मा ही आकर कि सत्य क्या है वो हमें बता रहे हैं। भ्राता जी, कई लोग ये जानना चाहते हैं कि वास्तव में ये बुद्धत्व है क्या, ये इनलाइटनमेंट है क्या, जिस शब्द को तो हम सुनते हैं लेकिन इसका वास्तविक भाव क्या है और इसकी आवश्यकता क्या है?
ये शब्द प्रचलित है और हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इसकी चाहना करता है। हमारे हिंदू धर्म में भी लोग ये हमेशा भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते ही रहते हैं, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, हे प्रभु मेरे मन के अंधकार को हर लो। बच्चों को भी प्रेयर्स में ये सब ऐसे गीत बने हुए हैं जो कहते हैं कि भगवान हमें विद्या दो, हमारा अंधकार हर लो, ये सब बातें हैं। तो ये जो अंधकार अंदर में है, अंधकार ये बाह्य अंधकार नहीं कि जब सूरज छुप जाता है और चारों ओर अंधेरा छाने लगता है, अज्ञान का अंधकार, विकारों का अंधकार, पाप कर्मों का अंधकार कि मनुष्य अपने को नहीं जानता, वो सब कुछ जान गया है। अब देखिए, एक व्यक्ति ने MSc किया हो, फिर PhD किया हो, उसने हजारों किताबें पढ़ डाली होंगी लेकिन अपने को वो नहीं जानता, और अपने को जाने बिना बाकी सब कुछ जानना केवल इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने जैसा है, चित्त का अंधकार दूर नहीं करती। इसलिए हमारे कॉलेज, हमारी यूनिवर्सिटीज मन के अंदर के अज्ञान के अंधकार को दूर नहीं करती। MSc और PhD और ये सब करने के बाद भी मनुष्य गाता ही रहता है, हे प्रभु मेरे अंधकार को दूर करो, हर लो मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। भाई तुमने क्या
मतलब किसी और प्रकाश की, किसी और ज्ञान की मतलब आवश्यकता है।
तो वही अपना ज्ञान नहीं है, परमात्मा का ज्ञान नहीं है, कर्म का ज्ञान नहीं है, स्वर्ग नर्क का ज्ञान नहीं है, मुक्ति जीवन मुक्ति का ज्ञान नहीं है, इवन माया का भी ज्ञान नहीं है। पाप कर रहे हैं लेकिन उन्हें पता नहीं कि वो पाप कर रहे हैं, इस सब का ज्ञान ले लेना। जब ज्ञान को मनुष्य स्वीकार कर लेता है, मैं कौन हूँ, इस संसार में कहाँ से आया हूँ, आखिर मेरा लक्ष्य क्या है और मुझे कैसे वापस जाना है, मुझे कैसे पुण्य कर्म करने चाहिए, अपने अंदर के देवत्व को फिर से जागृत करना चाहिए, ये सब जानना अपने को एनलाइटेंड करना है।
बिल्कुल व्रता जी, ये विशेष करके जब हम एनलाइटनमेंट की बात करते हैं तो कई प्रकार से लोग साधनाओं की विशेष बात करते हैं कि जब तक साधना नहीं होगी तब तक ये प्रकाश प्राप्त नहीं होगा, तो क्या लंबी चौड़ी कठोर साधना की आवश्यकता है या संसार में रहते हुए कुछ सहज साधना करके भी इस बुद्धत्व को पाया जा सकता
है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भगवान ने आकर पहले सत्य ज्ञान दिया यानी एनलाइटनमेंट दिया, साधना बाद में, और इसी एनलाइटनमेंट में एक टॉपिक आ गया राजयोग, और ये राजयोग की सरल साधना सिखा दी। तो पहले दिया सत्य ज्ञान का प्रकाश और फिर सिखाया राजयोग का सरल मार्ग। तो राजयोग भी ऐसा सरल मार्ग है जिसका अभ्यास एकांत में बैठकर भी किया जाता है और कर्म में भी कर लिया जाता है, पर किया जाता है गृहस्थ में ही। उसको छोड़कर जाने की या कठिन साधनाएं करने की या भोजन आदि त्याग करने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं रहती।
बिल्कुल, और इसीलिए शायद जब इन्होंने बहुत कठोर साधना की थी बुद्ध जी ने भी, तब सुजाता ने खीर लेके उन्हें यही कहा था कि वीणा की तार को शायद इतना भी मत खींचो कि वो टूट जाए और इतना ढीला भी मत छोड़ो।
खींच लिया था ज्यादा और मृत्यु तक पहुंच रहे थे, इसलिए उसने उनको बहुत धन्यवाद दिया था कि तुमने मेरा जीवन बताया, किसी ने उनको दूध दिया, किसी ने अन्न दिया। तो वास्तव में इसके पीछे एक छोटा सा रहस्य और है जो हम सभी को जानना चाहिए कि एक है हम सत्य ज्ञान प्राप्त कर लें, दूसरा है साधनाएं जब हम करते हैं तो हमारी बुद्धि बहुत डिवाइन होने लगती है, और जैसे जैसे हमारी बुद्धि डिवाइन एंड रिफाइन बनती है तो वही सत्य ज्ञान जो हमने प्राप्त किया है उसमें बहुत सूक्ष्मता भी होती है, उसको हम जानने लगते हैं। तो मोटे तौर पर हमारा प्रकाश, हमारे अंदर प्रकाश बढ़ जाता है, हमारा अंधकार दूर हो जाता है। जैसे घर में किसी ने अपने अंधकार को मिटाने के लिए एक बल्ब जला दिया हो, लेकिन बल्ब हो 25 वाट का ही, अब उसे पढ़ना हो तो उसे 60 का चाहिए और या और बड़ा 100 का चाहिए। ऐसे ही हम सत्य ज्ञान लेकर अपने चित्त के अंधकार को तो विलीन कर देते हैं, लेकिन अपने अंदर इस प्रकाश को बहुत बढ़ाने के लिए बुद्धि को रिफाइन और डिवाइन करना बहुत आवश्यक होता है, जो पवित्रता से और योग की साधना से सहज होती है, लेकिन वो भी योग की साधना कोई बहुत कठिन और जटिल नहीं है।
बिल्कुल, चलिए एक बहुत अच्छी बात है और शुभ समाचार है सभी के लिए कि सभी अपने जीवन में संसार में रहते हुए भी ऐसी साधना कर सकते हैं और बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं।
मैं इसमें एक छोटी सी बात जोड़ना चाहूंगा कि भगवान के द्वारा सिखाई गई जो राजयोग की साधना है ये मात्र कंसंट्रेशन नहीं कि भगवान पे ध्यान लगा लो, लेकिन उससे एक बहुत प्यार भरा नाता जोड़ना है। तो प्यार भरा नाता संसार में भी किसी को मिल जाए, देखो किसी का जीवन सूखा हो और उसे कोई प्यार भरा नाता मिल जाए तो जीवन में हरियाली आ जाती है ना। तो राजयोग में हमें प्यार भरा नाता मिल जाता है भगवान से, वो हमारा परम पिता है, खुदा दोस्त है, परम शिक्षक है, वो हमारा प्रियतम भी है, माँ भी है। तो उससे जब हम ऐसा लवफुल रिलेशनशिप जोड़ लेते हैं तो ये राजयोग एक आनंद कारी बन जाता है, सूखा नहीं। कई लोग सोचते हैं जो राजयोग करेंगे, योग करेंगे, ध्यान लगाएंगे, सूखापन आ जाएगा, लेकिन इसमें जीवन में हरियाली आ जाती है।
तो बहुत सुंदर बात है प्रताप जी कि आपने कहा कि परमात्मा से जुड़ जाएं, एक हरियाली आ जाएगी जीवन में। लेकिन यदि मैं महात्मा बुद्ध जी के जीवन को पढ़ रहा था प्रताप जी, तो उन्होंने कहीं भी परमात्मा की चर्चा नहीं की है, कभी भी स्वर्ग की चर्चा, नर्क की चर्चा नहीं की है। क्या कारण आप मानते हैं कि परमात्मा को उन्होंने बिल्कुल भी उनके बारे में कुछ नहीं कहा, वो मौन रहे, जबकि राजयोग में लगातार आप कहते हैं कि परमात्मा से संबंध जोड़ो, इससे ही हरियाली आएगी, खुशहाली आएगी, क्या कारण है?
देखिए, उन्होंने क्योंकि बहुत सारा अध्ययन कर लिया था और परमात्मा के बारे में बहुत सारे कन्फ्यूजन उन डिफरेंट फिलोसफीज में थे
उस समय,
हाँ, तो उन्होंने ये जरूर सोचा होगा कि अगर मैं भी परमात्मा के बारे में लोगों को कहूंगा तो एक नया कन्फ्यूजन पैदा होगा या लोग डिबेट करने आ जाएंगे। पंडित बहुत थे उस समय भी कि ये गलत है, ये सत्य है, इसलिए वो इस झमेले में न जाकर उन्होंने सीधा जीवन जीने का एक सरल मार्ग बताया कि जीवन में खुशी रहे, जीवन में शांति रहे, जीवन में प्रेम रहे, संघर्ष न हो, और विशेष रूप से अच्छी धारणाएं जो होती है ना मनुष्य जीवन की, जैसे पंचशील का जो उन्होंने सिद्धांत बनाया था, ये वास्तव में अनुकरणीय है कि मनुष्य झूठ न बोले, वो चोरी न करे, वो छल कपट न करे, वो व्यभिचार न करे, वो शराब आदि न पिए, एक जीवन सात्विक हो जाए, ये उनका लक्ष्य था। परंतु होता क्या है, मैं सभी जो हमारे श्रोता और दर्शक हैं उनके लिए गुह्य रहस्य यहाँ रख देना चाहता हूँ कि बातें तो बहुत सुंदर हैं, चाहे उन्होंने 8 नियम बनाए, भाई ये अच्छाई तुम अपने जीवन में धारण करो, मतलब श्रेष्ठ धारणाएं मनुष्य को सिखाई। आज भी देख लीजिए, मनुष्य को ये पता है कि ईमानदार होना चाहिए, उसे ये पता है कि सत्यता बहुत अच्छी चीज है, उसे पता है कि प्रेम एक बहुत बड़ी धारणा है, पवित्रता सचमुच एक दिव्यता है। यही बात तब उन्होंने समझा दी, लेकिन किसी बात को समझ लेने के बाद उसको जीवन में अपनाना, इसके लिए योग की शक्ति की आवश्यकता होती है। और योग केवल ये नहीं कि हम मन को शांत करके ध्यान में बैठ जाएं, योग अर्थात हम परमात्मा से जुड़ जाएं, सर्वशक्तिवान से जुड़ जाएं, उसकी शक्तियां हमें प्राप्त हों, ताकि पंचशील के सिद्धांत को हम जीवन में अपना सकें। अब कह तो दिया झूठ न बोलो शराब न पियो, लेकिन लोग पीते रहे। कह तो दिया व्यभिचार बहुत बड़ा पाप है, लेकिन हम देख रहे हैं आज तो बलात्कार के रूप में इसमें अति हो गई है और अनेक लोग व्यभिचारी बन गए हैं, करप्शन भी संसार में बहुत हो गया है। ऐसे ही चाहे सत्यता के मार्ग पे चलना हो, चाहे मनुष्यों के लिए कल्याणकारी भावनाएं रखनी हो, चाहे एक श्रेष्ठ भावना सबको सुख देने की कामना रखनी हो, इसका ज्ञान होते भी मनुष्य कर नहीं पा रहा क्योंकि उसका मन अति निर्बल है। तो यही हुआ कि महात्मा बुद्ध ने अपने सभी शिष्यों को जो एक संघ बन गया था उसको ये बहुत अच्छी शिक्षाएं दी, लेकिन समय के अंतराल में मनुष्य उन शिक्षाओं को जीवन में अपना नहीं पाया।
आज एक जो भी पंचशील के सिद्धांत की बात हम कर रहे हैं, चाहे वो हत्या ना करना है, चोरी ना करना है, झूठ ना बोलना है, व्यभिचार की बात है या मद्यपान की, आज बहुत ज्यादा देखने में आ रहा है और बहुत प्रासंगिक हो गया है आज के समय में कि इन चीजों पे अमल किया जाए। क्या विशेष आप कहेंगे कि कैसे इन्हें अपने जीवन में लाएं? आत्मनिर्बल तो हो गई है, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन ये भी जरूरी है कि यदि हमें समाज को श्रेष्ठ बनाना है तो इन धारणाओं को लाना जरूरी है, कैसे लाएं?
बिल्कुल, इन धारणाओं को जीवन में लाए बिना तो संसार का कल्याण होगा नहीं। चाहे व्यभिचार की बात हो, इसके लिए प्योरिटी अपनानी है, तो इन सब के लिए राजयोग ही आवश्यक है कि हमारा कनेक्शन परमात्मा से हो जाए, हम उनसे शक्तियां लेने लगे। और राजयोग में एक दूसरी सुंदर बात हमें सिखाई जाती है कि तुम देवकुल की संतान हो, तुम्हें तुम्हारे अंदर देवत्व समाया हुआ है, अगर तुम राजयोग करोगे तो वो देवत्व जागृत होगा और ये चीज नेचुरल रूप से आपके जीवन में आने लगेंगी, उन चीजों से नफरत हो जाएगी जो बुराइयां हैं, चाहे शराब पीना है, चाहे झूठ बोलना है, चाहे और गंदगी बहुत सारी है, पंचशील क्या 15 शील बना दें इनके लिए, तो उन सब चीजों से वैराग्य होने लगेगा और देवत्व उभरने लगेगा। इसलिए सत्य ज्ञान प्राप्त करना, अपने अंदर छुपे हुए देवत्व को पहचानना और साथ में राजयोग अभ्यास करने से ये सब चीजें जीवन में सहज आने लगते हैं। हमारे पास ऐसे लाखों करोड़ों लोग हो गए हैं जिन्होंने ये सब चीजें छोड़ दी है, शराब छोड़ दिए, व्यभिचार छोड़ दिए है, ये झूठ कपट इन सब से मुक्ति पा ली है और हम उसका आधार देखते हैं देवत्व जागृत हो गया है।
बहुत सुंदर बात है। तो माता जी, आज के शुभ दिवस पर अभिषेक क्या पूरे ही बौद्ध समाज को और साथ ही पूरे संसार को क्या संदेश देंगे?
बिल्कुल, मेरी यही शुभ भावना है कि हमारे बुद्धिस्ट भाई बहने जो महात्मा बुद्ध के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चल रहे हैं, हम चाहेंगे कि जो उन्होंने पंचशील का या अष्टांग मार्ग जो दिया उसको संपूर्ण रूप से फॉलो करें तो धर्म को बल मिले और ये धर्म का बल मनुष्य के जीवन में सुख शांति लाने वाला है, एक संतोष लाने वाला है। तो चाहे बौद्ध धर्म के सन्यासी हैं, लामाज जिनको कहते हैं, चाहे बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, सभी अपने सिद्धांतों पर बहुत दृढ़ हो जाएं और विशेष रूप से जो महापुरुष हैं इसमें अब भी वो ऐसी साधनाएं करें कि उनकी साधनाएं संसार को बल दे, संसार में सुख शांति की लहर फैल जाए, संसार में ये सब चीज जो महात्मा बुद्ध ने बताई थी और उसके विरुद्ध जो कुछ हो रहा है, उस पाप की जो बड़ी एक लहर फैली हुई है संसार में और लोग पाप को ही पुण्य मान रहे हैं, तो बौद्ध धर्म के सभी लामाज और सभी महापुरुष ऐसी साधनाएं करें, अपने जीवन को ऐसा आदर्श बनाएं कि ये पाप की जो गंदा नाला बह रहा है ये समाप्त हो जाए, सभी को अपने पाप का रियलाइजेशन हो और श्रेष्ठ पथ पर उनके कदम आगे बढ़ें। तो मैं तो ये कहूंगा कि बुद्ध जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, उनका ये निर्वाण दिन वास्तव में सभी को बुराइयों से मुक्त करे, सभी की वाणी में तेज मधुरता और निर्मलता भरे और ये धर्म भी बहुत फले फूले, सभी में देवत्व उजागर हो। मेरी सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं शुभ भावनाएं हैं
जी। बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी सुंदर संदेश के लिए। सभी निश्चित रूप से इसे अपने जीवन में लाएंगे और उनका जीवन बहुत श्रेष्ठ होगा, महान होगा और समाज का उद्धार और उत्थान होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, जब कभी हम किसी महापुरुष के जीवन पर प्रकाश डालते हैं, देखते हैं, तो सचमुच हम स्वयं भी बहुत ज्यादा प्रकाशित महसूस करने लगते हैं और लगता है कि हमारी वो चर्चा होती रहे, क्योंकि उन्होंने जीवन में जिन चीजों को धारण किया उनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता आज भी है। चाहे पंचशील की बात हम कर रहे थे, चाहे अष्टांग मार्ग की हम बात कर रहे थे, सभी सचमुच बहुत बहुत आवश्यक है। मुझे एक बात याद आती है कि जब महात्मा बुद्ध जी महानिर्वाण के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए थे, तब उनके जो पट्ट शिष्य थे आनंद, उनके समीप बैठे हुए थे। उन्होंने पूछा कि भंते, आपके जाने के पश्चात इस संसार का क्या होगा? आप हैं तो संसार प्रकाशित है, आप चले जाएंगे तो संसार फिर से अंधकारमय हो जाएगा। तब बुद्ध जी ने बहुत सुंदर बात आनंद को कही थी। उन्होंने कहा, आनंद अपदीपो भव, तुम स्वयं को प्रकाशित करो। जब हरेक व्यक्ति स्वयं को प्रकाशित कर लेगा तो संसार स्वतः प्रकाशित हो जाएगा। इसीलिए आज इस बुद्ध पूर्णिमा पर हम सब भी प्रण करें, संकल्प करें कि हम भी बुद्धत्व की ओर चलेंगे, हम भी स्वयं को प्रकाशित करेंगे। एक बार पुनः बुद्ध पूर्णिमा की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।